सरस्वती पर सीढ़ियों के पैर की आहट हुई। सरस्वती से डर नहीं था, फिर भी शेखर का दिल धड़क उठा। वह भागकर चारपाई पर जाकर लेट गया। सरस्वती आई, चारपाई पर बैठ गई, पांव समेटकर, घुटने भुजाओं से घेरकर, घुटनों पर टोहड़ी टेक कर। शेखर नहीं रह सका, उसने पूछा, क्या हुआ? मानो अभी जागा हो। सरस्वती चौंक गई, फिर बोली, शेखर, तुम्हारी एक और बहन हो गई है। बहन? बहन भी होती है? शेखर ने पूछा। तुम्हारे जैसी? दूर पागल, अभी तो इतनी छोटी है, पिद्दी सी, जब बड़ी होगी। शेखर ने बड़े गंभीर स्वर में कहा। सरस्वती विस्मित सी होकर बोली, क्या है? शेखर ने कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाया था। जो मैं पढ़ूंगा बताओगी? झूठ मत बताना, चाहे बताना मत। सरस्वती ने कुछ संदिग्ध स्वर में कहा, क्या? शेखर ने बड़े प्रयास से कह पाया, बच्चे कैसे आते हैं? सरस्वती ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। प्रतीक्षा करते करते शेखर के भीतर एकदम शब्दों की सी बाढ़ सी आ गई। बोला, दाई लाती है, डॉक्टर लाता है, ईश्वर देता है, या सब मैं सुन चुका हूँ, या मत बताना, वह सब झूठ है, मुझे पता है। बताओ, अगर ऐसे आते हैं तो इतने छिपा 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 कर क्यों आते हैं, और हमको क्यों नहीं आते हैं? और कहती थी कि हम और बच्चे नहीं चाहिए, उनको क्यों आए? उन्होंने वापस क्यों नहीं कर दिए? ईश्वर क्यों भेजता है? मैं बहन मांगा करता था तो भाई क्यों आया था? चिड़ियों के बच्चे अंडे में से निकलते हैं, मैंने आप देखे हैं। माँ अंडे तोड़कर निकालती है, अंडे कहाँ से आते हैं? अब बहन आई है, इतनी रात को क्यों आई? दिन में क्यों नहीं आई? और हमें वहाँ जाना क्यों नहीं मिलता? और सब लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बताओ, तुम्हें पता है? फिर एकाएक लज्जित सा होकर वह चुप हो गया। इतनी लंबी स्पीच उसने शायद कभी नहीं दी थी। सरस्वती ने कुछ टालते हुए से कहा, क्यों, ईश्वर नहीं भेजता? झूठ मत बोलो बहन, सरस्वती ने किसी तरह कहा। माँ के शरीर में से निकलते हैं। शेखर उठ बैठा। कहाँ से, कैसे? मुझे नहीं पता, कहकर मुंह सिर लपेट कर लेट गई। फिर शेखर ने बहुत बुलाया, उठकर जाकर हिलाया भी, लेकिन वह नहीं बोली, नहीं बोली। शेखर लेट गया और छत की ओर देखने लगा, और मानो अपने ही व्यक्तित्व की जोर से अपने को वहाँ छत पर टांग कर उससे कहने लगा, शेखर, तू सोच, किसी से पूछ मत, तू सोच, तू बता, तू कहाँ से आया, कैसे आया? सवेरा हो गया और शेखर तब भी अपनी आँखों से उसे वहां स्थापित किए हुए छठ पर टंगे अपने प्रतिरूप से वही प्रश्न पूछ रहा था। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं, सरस्वती ने झूठ नहीं कहा था, नहीं तो वह इतनी लज्जित ना होती। दुख और कष्ट के जलन के बाद एक बात शेखर के हाथ आई है, जो सच है, जो है, और बस है, बदल नहीं सकती। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं, लेकिन इसके आगे एक दीवार जिसकी एक एक ईंट है, ईश्वर और समाज और कुटुंब और माँ बाप और परंपरा, और जिसे जोड़कर एक रखने वाला सिरमिट है डर। और इस दीवार से आगे जो भी स्त्री जाती है, शेखर उसकी ओर देखता है और सोचता है, इसके शरीर में भी कहीं छिपे होंगे, लेकिन कहाँ? शेखर चोरी करने लगा। अब तक शेखर के लिए यह स्वभाव संभव नहीं था कि वह छिपा कर कोई बुरा काम करे, क्योंकि जब वह अकेला होता था तभी उसके कर्मों पर उसकी अपनी आत्मा का नियंत्रण सबसे अधिक होता था। पर अब वह ऊपर किसी की दृष्टि से शरीफ, संस्कृत और भला मानस होने लगा, जिसे कहते हैं हमारा बेटा तो बेटियों जैसा है, और भीतर ही भीतर कहीं गिरने लगा। उसे उत्तरदायित्व की काम मिलने लगी। पहले जहाँ एक छोटा सा काम पाकर वह इतना प्रसन्न होता था कि इतनी लगन से उसे करता था कि बहुधा बिगड़ भी जाता था, वहाँ अब वह प्रत्येक अवसर में ही यही सोचता था कि मैं कैसे छिपे छिपे नुकसान कर सकता हूँ। उसे कभी संदूक जी की चाबी दी जाती तो कुछ एक ऐसे पैसे निकाल लेता इसलिए नहीं कि वे उसे चाहिए, केवल इसलिए कि चाबी उसके पास है और वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। रात को उसे कहा जाता था कि ईश्वर और प्रभु दत्त के मास्टर को कोष्ट में वे इन दिनों प्रतीक्षा की तैयारी कर रहे थे। कोष्ट बंद दूध दे आए तो वे रास्ते में एक दो घूंट पी लेता था, इसलिए नहीं कि घर में उसे दूध नहीं मिलता, इसलिए कि वह बिना किसी के देखे कुछ बुरा काम कर सकता है। यहाँ तक कि वह कभी रसद के कमरे में जाता तो किसी बॉक्स के पीछे थोड़ा घी गिरा आता। ऐसी हर एक हरकत में मानो उसका मन कह रहा होता था, तुम मुझे अच्छा मत समझो, मैं अब भी बुरा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे अच्छा कहते हो। इससे मानो उसके अभिमान की पुष्टि होती थी। और ये सब काम छिपे ही रहते थे और घर में उसका सम्मान बढ़ता जाता था। और ज्यों ज्यों वह बढ़ता जाता त्यों त्यों शेखर का पतन भी अधिकाधिक होता जा रहा था। उसे उस अलमारी की चाबी दी गई जिसमें किताबें बंद थी। बादाम या कुछ ऐसी चीज़ निकालने के लिए उसे कहा गया था। उसने अलमारी खोली, दो तीन किताबें निकाल कर अलमारी के नीचे ढकेल दी, बादाम निकाले और चाबी दे आया। बाद में मौका पाकर उसने वे किताब उठाई और छिप कर पढ़ने लगा। रद्दी गुलाबी या पीले कागज पर बड़े बड़े लखनऊ टाइप में छपे हुए उन किस्सों को पढ़कर शेखर सोचने लगा कि क्या इनमें जो इतने सुरक्षित रखे जाते हैं, मालिन की बेटी, दो जोड़े का पट्टी, बगदाद की बुढ़िया, 3.5 प्यार, 7.5 खून, संदूरी डाकू, बेताल 25, तोता मैना, सिंहासन 32, तिलिस्मी अंगूठी, मिस्र का जादू। दो दो तीन तीन करके शेखर ने सब किताबें देख डाली। इतनी रद्दी, इतनी भद्दी, इतनी बहुदी थी कि वे शेखर का जी मिचला उठा, वह उप बैठा। वह उससे पढ़ी नहीं जाती फिर भी केवल इसलिए कि वे मना थी। उन्हें पढ़कर शेखर बुरा काम कर रहा था, वह उन्हें पढ़ता जाता था और उसने सब पढ़ डाली। और कितना सुख होता था कि जब वह मन ही मन माँ को संबोधन करके कहता था, तुम बड़ा अच्छा भोला, समझती हो ना मुझे, मैं बदमाश हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ और मैंने ये सब किताबें पढ़ डाली जो तुमने बचा बचा कर रखी हुई है। शेखर चुगलखोर हो गया। जब कभी किसी भाई से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो शेखर भागा हुआ माँ के पास जाता, कहता, माँ माँ ने यह कर दिया है, देखो तो। कभी कभी अकारण भी किसी की शिकायत कर देता, तब उसे फटकार खाते या पीटते देखकर मन ही मन कहता, ठीक है, अच्छा पिटना ही चाहिए, मैं बुरा हूँ, मुझे सब मानते हैं, मेरा आदर होता है, तुम अच्छे क्यों हो। और जब भाई कभी उसकी ओर आशंका या आत्मविश्वास की दृष्टि से देखते तो उसे लगता, हाँ मैं भी कुछ हूँ, एक सीढ़ी और। शेखर भद्दी भद्दी तुकबंदी करने लगता। अश्लील नहीं थी, अश्लीलता से अभी शेखर का परिचय नहीं हुआ था, केवल भद्दी थी, विभत्स थी। इसे वह किसी के सामने पढ़ नहीं सकता था। कभी एकांत पाकर जोर जोर से बोला करता था और ऐसे अवसरों पर वह हवा को गालियां भी दिया करता था, कुछ ऐसी जिनका वह अर्थ भी नहीं जानता था लेकिन जो उसने सुनी थी और जिनके बारे में उसे मालूम था कि उन्हें कहना बुरी बात है। अच्छे या बुरे होने का शेखर के लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। उसके लिए बात बड़ी या थी कि वह कुछ हो सही और वह अनुभव करे कि वह कुछ है, इस विश्वास का सहारा लिए कि वह बहुत जरूरी हो गया था। चंद्र के फेंके हुए पत्थरों के मकान के बाहर फूलों के गमले टूट गया। तब वह भोला भाला भागा हुआ माँ के पास गया और हाँपता हुआ बोला, माँ माँ मैंने गमले नहीं तोड़े। माँ ने पूछा, कौन से गमले? मैंने नहीं तोड़े हुए। तभी शेखर भी पहुँचा। माँ वे जो जो बाहर गमले थे ना नीले फूलों के, जो पिताजी के दफ्तर से मंगाए थे, वे चंद्र ने पत्थर मार मार कर तोड़ दिए हैं। चंद्र ने कहा, माँ पहले कह चुका हूँ कि मैंने नहीं तोड़े। मानो पहले कहीं जाने के कारण उसकी बात अधिक